તારીખ 21-2-1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 291 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 232
દર્શન પ્રશ્ન 291 પાનું 169 સમ્યક દર્શન થયા પહેલા સ્વભાવનો મહિમા આવે ક્યા પ્રશ્ન હે કે સમ્યક દર્શન હોને કે પહેલે સ્વભાવ કી મહિમા આતી હૈ ક્યા એસા પ્રશ્ન કિયા હૈ તો સમ્યક દર્શન હૈ स्वभाव के महिमा के पहलू से देखा जाए तो सम्यक दर्शन स्वयं अत्यंत स्वभाव की महिमा का ही पर्याय है, क्योंकि उस वक्त अभेद श्रद्धा हुई, उस वक्त अभेद अनुभव हुआ और अभेद लीनता रूप स्वरूप आचरण चारित्र भी हुआ, स्वरूप स्थिरता आई वो चारित्र है, वितरागता भी प्रकट हुई वो चारित्र है। तो अत्यंत महिमा के कारण से, स्वयं की अत्यंत महिमा के कारण से महिमा ने अभेदता साधी। क्या हुआ? श्रद्धा से, ज्ञान से और चारित्र से अभेदता साध ली। तो अपने जो सम्यक्त्व का आर्टिकल आखिरी लिखा है स्वानुभूति प्रकाश का, पहला दूसरा अंक में जो आर्टिकल आया उसमें वो बात किया है। सम्यक्त्व क्या चीज है, सम्यक्त्व क्या है, कि स्वरूप की अपूर्व और अत्यंत महिमा वही सम्यक दर्शन है। वो महिमा के दृष्टिकोण से सम्यक दर्शन की परिभाषा है। ऐसे अनेक प्रकार से सम्यक दर्शन की परिभाषा मान ली है, महिमा की भी ली है। यहां भी यही बात चली है कि स्वभाव की यथार्थ महिमा विकल्प टूट जाए तब आती है। निर्विकल्प स्वानुभूति में स्वभाव की यथार्थ महिमा है, यानी पर्याप्त महिमा है। स्वभाव की महिमा करने वाला विकल्प है वो पर्याप्त महिमा नहीं है। क्यों? कि विकल्प खुद चारित्र गुण की विपरीत पर्याय है। विपरीत कहो या स्वरूप की विरोधी विराधक पर्याय कहो, तो विराधक भाव स्वरूप की महिमा कैसे करेगा, कितना करेगा? स्वरूप की महिमा तो आराधक भाव से होती है, क्योंकि अभेदता सदती है, वो साधक है। इसलिए विकल्प टूटता है, स्वभाव की स्वरूप की महिमा करने वाला विकल्प भी सम्यक दर्शन के काल में नाश को प्राप्त होता है, उसका नाश होता है, टूट जाता है, अभाव होता है। ये विकल्प शून्य दशा होती है तभी तो सम्यक दर्शन होता है। लगे ऐसा कि विकल्प में भी स्वभाव की तो महिमा थी और तो कोई बात नहीं थी, न कोई कुटुंब परिवार की चिंता थी, न कोई व्यापार धंधा का कोई रूप विकल्प था, न कोई देवगुरु शास्त्र का भी विकल्प था वहां। तो जब स्वरूप की पहचान आती है तब से महिमा शुरू होती है। इसके पहले वाली महिमा वो तो ओक संज्ञा में चलने वाली महिमा है, उसका कोई मूल्य नहीं है इतना। लेकिन पहचान से जो महिमा आती है वो स्वरूप सन्मुखता चालू होती है तब होती है, और वो महिमा आगे बढ़ करके निर्विकल्प हो जाती है। लेकिन वो स्वविकल्प महिमा चलती है, वो महिमा के परिणामों में जब तक विकल्प है तब तक अपना स्वरूप का अनुभव से जीव दूर है। यानी ये विकल्प है वो अभेद अनुभव में बीच में पर्दा रूप है, दीवार रूप है, अंतराय रूप है। वो अंतराय मिटता है तब साक्षात्कार होता है, इसके पहले साक्षात्कार नहीं होता है। तो इसलिए ये महिमा को पर्याप्त महिमा नहीं कहते हैं। महिमा अवश्य है क्योंकि पहचान आई और ये महिमा है वही बढ़ेगा। महिमा अभाव होकर के अनुभव नहीं होगा, विकल्प अभाव होकर के अनुभव होगा, लेकिन महिमा वृद्धिगत होकर के अनुभव होगा। और ये अनुभव ही महिमा की ही पर्याय है, दूसरे कोई पर्याय नहीं है। पछी महिमा खरेखरो महिमा त्यारे शुरू थाय, जेम के तमे हीराना दागीना पहेरो छो, हीरा समझीने ज पहेरो छो, पैसा पण हीराना ज दियो छो के भाई आ 10 लाख नो नेकलेस छे, तो भी तमे अमने वांधो नथी, अमने माल सारो आपो, 10 ના 10.25 લાખ लियो अमने वांधो नथी, पण माल मां क्षेत्रमण नहीं जोईए, एटले खोटा हीरा नो जोईए। ये 10.25 લાખ देने वाला भी हीरा को नहीं पहचानता। 10.25 लाख दे दिया इसलिए हीरा की पहचान आ गई, सो बात है ही नहीं। पहचान अलग चीज होती है, खरीदी पैसा देना ये अलग चीज होती है। पहचान वाले के पास पैसा नहीं हो बन सकता है, पर पैसा हो पर खर्च करें इसलिए पहचान होगी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे हम आत्मस्वरूप के विषय में आगम से या ज्ञानी के प्रवचन से, सुनने से या पढ़ने से समझते हैं, समझने का क्षोभ होता है हमको कि आत्मा में कैसी कैसी गुण संपत्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत आनंद है, अनंत पुरुषार्थ है, अनंत ऐश्वर्य प्रभुता है, विभुता है, स्वच्छता है, बहुत से अनंत गुण है। और ऐसे ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है करके महिमा भी हम कर सकते हैं, लेकिन पहचान अलग चीज है, ओक संज्ञा अलग चीज है। इसलिए वो पहचान की पहचान को ही सम्यक दर्शन का अंगभूत कारण बताया है शास्त्र में भी और ज्ञानियों ने भी। तो पहचान से जो महिमा आती है वो भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ विकल्प का अंतराय खड़ा है, अभी भी विकल्प पीछा नहीं छोड़ता, और जब तक वो पीछा नहीं छोड़ता वहां तक निर्विकल्प स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव संभव नहीं है। इसलिए यहाँ ऐसा कहा है कि स्वभाव की यथार्थ महिमा यानी पर्याप्त महिमा जब विकल्प टूटता है तब आती है, यानी पर्याप्त महिमा आती है तो विकल्प टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? कि स्वरूप तो निर्विकल्प है, स्वरूप स्वयं निर्विकल्प है, तो निर्विकल्प स्वरूप की महिमा निर्विकल्प भाव से हुए वही अपने स्वरूप के साथ सुसंगत है, और विकल्प से हुए तो उतनी विसंगतता है, सुसंगतता नहीं है। वो तो क्या हुआ है पहचान के काल में, कि पहचान तो ज्ञान ने की, पहचान कौन करता है? ज्ञान करता है। तो ज्ञान में निश्चय होता है पहचान के काल में कि मैं ऐसा ही हूं, परमार्थ की स्पष्ट अनुभवांशे प्रतीति माने विश्वास, वो दूसरा संकेत है 751 पत्र में कहा। तो वो पहचान होने से निश्चय हुआ, प्रतीति माने निश्चय हुआ, निर्णय हुआ कि मैं ऐसा हूं। वो निश्चय निर्णय इसका बल लेके पैदा होता है, उसको निश्चय बल कहते हैं, निर्णय बल कहते हैं। बल इसलिए कहते हैं कि वहां से पुरुषार्थ स्वरूप सन्मुखता का चालू हो जाता है। तो विकल्प भी है लेकिन अकेला विकल्प नहीं है, साथ साथ पहचान वाला ज्ञान भी है और स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ भी है, दोनों बात साथ में है। ये पुरुषार्थ वृद्धिगत होगा और महिमा वृद्धिगत होगा होगी, और स्वरूप की अनन्य रुचि उस वक्त पैदा होती है कि जो रुचि स्वरूप से परिणाम को भिन्न रहना को पोषण नहीं करती, पोषाता नहीं है रुचि को, कि महिमा करने वाला परिणाम और स्वरूप दो अलग अलग रहे, एक साथ नहीं रहे, वो रुचि को नहीं पोषाता। ऐसी अनन्य रुचि उत्पन्न होती है, वो रुचि भी बढ़ती है, महिमा भी बढ़ती है, पुरुषार्थ भी बढ़ता है। और ज्ञान तो जो है सो है, वो तो निश्चय हो गया पक्का, वो बढ़कर के अभेद अनुभव होता है। तीसरी बात है विकल्प में भी महिमा होती है। तो ये रुचि पुरुषार्थ और ज्ञान तीनों का तीव्रपना उतना है, उग्रपना उतना है कि चारित्र गुण के विकल्प दूसरे दूसरे पदार्थों के में जाता था, वो अभी इसके पीछे वो खींचाने लगा। गुजराती भाषा में कही तो ये ढसड़ावा मींडो बिचारा। विकल्प छे ज्ञान रुचि पुरुषार्थ ने महिमा पाछळ ढसड़ावा मींडो, घिसे घसीटने लग गया। लेकिन वो मरने वाला है, भले ही वो साथ देता है, क्या करता है, पहले तो उल्टा चलता था सुबह सुबह में, अभी स्वरूप की महिमा करने लगा, फिर भी वो जिंदा रहने वाला नहीं, वो टूटेगा। जबकि रुचि नहीं टूटेगी, पुरुषार्थ नहीं टूटेगा, महिमा नहीं टूटेगी, ज्ञान नहीं टूटेगा, विकल्प टूटेगा, क्योंकि उस वहां विपरीतता है। इसलिए पर्याप्त महिमा यथार्थ महिमा तो विकल्प टूटता है तब आती है, परंतु इसके पहले विचार करके निर्णय करें, वो कारण है। निर्णय है, निश्चय है, पहचान है, वो कारण है। उसमें भी उसकी महिमा तो आती है, वो महिमा पहचान होते ही महिमा चालू होती है। जैसे हीरा को हमने मोक्ष संज्ञा से खरीदा, लेकिन हमको ऐसा हुआ कि उसकी पहचान भी करें, तो हम आई ग्लास लेकर के उसको देखने लगे, उसका अभ्यास चालू किया, देखने का पहचानने का अभ्यास चालू किया। मैंने पहचान तो परिचय से होती है, चाहे व्यक्ति की हो, चाहे शक्ति की हो, चाहे कोई गुल वस्तु की हो, परिचय के बिना पहचान नहीं होती। तो ये परिचय चालू कर दिया, देखना, हीरा को देखना मैंने क्या, हीरा का परिचय चालू कर दिया। तो सभी चीज, सोना हो, चांदी हो, चाय हो, चावल हो, गेहूं हो, बाजरी हो, कपड़ा हो, इसकी पहचान आती है तो परख आती है, परख से ही उसकी उसका मूल्यांकन होता है। पैसा देने से मूल्यांकन नहीं हुआ, ये सोने का चेन 15,000 का भी होता है और 15 रुपया का भी मिलता है फुटपाथ पे। चमक तो दोनों की, और चमक और डिजाइन दोनों एक सी लगेगी। अरे कभी नकली ज्यादा भी चमकेगा, लेकिन जिसको परख है वो 15 रुपया वाले में उसका 15,000 देने वाला नहीं है। तो परख से उसका मूल्यांकन होता है, पहचान आती है। वैसे ही स्वरूप का निश्चय और पहचान होने से ही सही मूल्य आता है, तो उसकी महिमा जागृत हो जाती है। पहचान ही नहीं है तो महिमा आई वो बात कहाँ से हुई? मोक्ष संज्ञा से भले ही कोई करे, लेकिन वो बात यथार्थ तो है ही नहीं। इसलिए पहले विचार करके निर्णय करें, उसमें भी उसको महिमा तो आती है, पहचान में महिमा शुरू होती है। और यथार्थ महिमा यानी पर्याप्त महिमा तो स्वरूप में लीन हो, स्वानुभूति की दशा प्रकट होवे, तभी ही आती है, क्योंकि वो पर्याप्त महिमा है। उस डिग्री तक महिमा पहुंचनी चाहिए कि वो अभेदता को साधे। जब स्वरूप स्वयं ही है और स्वरूप के परिणाम भी स्वयं का है, कोई दूसरे का तो नहीं है, फिर अलग अलग क्यों रहे? फिर अलग अलग रहने का मतलब क्या? और जो अवस्था है वो तो महिमा करती है, विरोध करे तब तो अलग रहे, लेकिन प्रीति करे महिमा करे तो अलग रहने का मतलब क्या? अपने स्वरूप से तो स्वरूप को देखता है ज्ञान, निर्णय के काल में स्वयं के रूप में देखता है, थर्ड पर्सन के रूप में नहीं देखता है स्वरूप को। इस स्वरूप के साथ भिन्नता रहे परिणमन में, वो बात रुचि को पोसाती ही नहीं है। तब स्वानुभूति की दशा प्रकट होवे तब यथार्थ महिमा यानी पर्याप्त महिमा होती है। फिर भी खुद इस विचार करके निश्चय करता है, उसमें भी महिमा आती है। विचार करके, प्रयोग करके, परिचय करके निश्चय करता है, परख करता है, पहचान करता है, उसमें भी महिमा तो आती है, और महिमा वहाँ से ही शुरू होती है। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सब बीच में विकल्प का अंतराय है, बीच में विकल्प है, वो विकल्प की जाति अलग है, विकल्प की जाति अलग है। चारित्र गुण की मूल जाति तो वितरागता प्रकट करने की है, उसमें विकल्प है वो राग है, और वो विरुद्ध जाता है यानी विभाव में जाता है, वो स्वभाव में नहीं आता। इस तरह से ये प्रश्न जो किया कि सम्यक दर्शन के पहले स्वभाव की महिमा आती है, तो इसलिए ये स्पष्टीकरण दिया कि मुमुक्षु लोग शास्त्र पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और आत्मा के विषय में जानकारी पूरी मिलती है, लगता है कि हमको निश्चय हो गया, और ओक संज्ञा से महिमा भी करते हैं। तो इस बात को स्पष्ट कर दिया बेंद्रे ने कि देखो, अनुभव होवे, अभेद अनुभव होवे, वही यथार्थ और पर्याप्त महिमा है। इसके पहले निश्चय के काल में आता है, लेकिन निश्चय के विषय में कुछ एक लोगों को भ्रम भी हो जाता है कि जब हमारा विचार और हमारा निश्चय आगम के साथ मेल खाता है तो हमारा निश्चय क्यों सही नहीं है। वो चर्चा गुरुदेव के साथ हुई थी, एकांत में कभी जाते थे तो वही चर्चा निर्णय के विषय में किया था, क्योंकि निर्णय यथार्थ निर्णय तो ऐसा होता है, महिमा उठती है, रुचि उठती है, महिमा चलती है, पुरुषार्थ चलता है। वो बात आत्मधर्मों में भी रात्रि चर्चा में आई थी, उसको लेकर के उतरता, छेड़ी थी एकांत में। तो बोले कि बात तो ठीक है, लेकिन क्या है कि लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, बुद्धिमान भी है, तो बुद्धि के बल से मान लेते हैं कि हमको भी निश्चय हो गया और हम महिमा भी करते हैं, तो वहां गड़बड़ हो जाती है, मान लेते हैं कि हमको निर्णय हो गया है, और सम्यक दर्शन तो होता नहीं। ऐसा निर्णय से, औगिक निर्णय से तो सम्यक दर्शन नहीं होता, वो तो परलक्षिक सूक्ष्म ज्ञान में हो गया। तो वो बात में भूल नहीं हो जाए इसलिए ये स्पष्टीकरण देते हैं कि तुमको मालूम नहीं पड़े तो अभेद अनुभव तक पहुंच जाओ एक दफे। निर्णय हुआ है ना, अच्छी बात है, चलो कोई कहीं कि हमको तो निश्चय हो गया है, हमको तो बराबरी जैसा आचार्य कहते हैं, गुरु कहते हैं, वैसा ही हमको तो निर्णय हमारा दिखता है, अन्यथा निर्णय हमारा दिखता ही नहीं है, फिर हमारा निर्णय क्यों सही नहीं है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर आपको निर्णय हो गया है तो अभेद अनुभव तक पहुंच जाओ, क्योंकि वो तो अनन्य कारण है। जिसको दूसरा संकित हुआ उसके गर्भ में तीसरा संकित आ गया, जन्म होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, कुछ उसको किसी को तो घंटे में होता है, किसी को कुछ दिनों में होता है, ज्यादा से ज्यादा लगता है तो 6 महीने से ज्यादा तो लगता ही नहीं। ऐसा ये जबरदस्त बात है, पुरुषार्थ ऐसा उठता है। तो इसलिए भूल नहीं हो जाए इसलिए ये दो प्रकार का स्पष्टीकरण दिया है। और अपने तो निर्वाण दर्शन की पगडंडी में तीसरा प्रकरण पूरा 30 पेज का इसके पर लिखा हुआ है कि यथार्थ निश्चय होता है तो इसके सिम्टम्स कितने हैं, 9-10 सिम्टम मान लिए हैं, हुआ 291। अब 292 प्रश्न किया है कि क्या उसे प्रयत्न चालू रखना चाहिए, यानी मुमुक्षु को स्वानुभव के लिए पुरुषार्थ चालू रखना चाहिए क्या। अब ये प्रश्न करने की आवश्यकता तो है ही नहीं, पुरुषार्थ तो सहज उठता है और चालू ही रहता है, लेकिन जो कृत्रिम करू करू वाला पुरुषार्थ है उनको ऐसा लगता है कि मैं चालू रखू ने, मैं चालू रखू ने, मैं ये करू ने, पुरुषार्थ करू ने, ये करने की बात नहीं, ये होने की बात है। चैतन्य वीर्य नहीं, अंतर्नि स्फूर्णा नहीं आ रही, चैतन्य वीर्य की स्फूर्णा आती है तो बात अलग होती है। वो परमागमसार में वो शब्द लिया है गुरुदेव ने, निर्णय होता है तो चैतन्य वीर्य की स्फूर्णा आती है। इसलिए स्वरूप सन्मुक्त और सन्मुक्ता का पुरुषार्थ बोला है उसको। समाधान दिया है कि प्रयत्न चालू रखना ही चाहिए, यानी प्रयत्न चालू रहना ही चाहिए, या चालू होता है, चालू ही रहता है, इसका मतलब वो है। पुरुषार्थ चालू रहता है, निश्चय हो गया तो पुरुषार्थ चालू रहेगा। हम कैसे रहेगा, एक दृष्टांत लेते हैं कि आपके घर में एक पत्थर पड़ा है, 2 साल का 4 साल का बच्चा है, खिलौना की तरह उसके साथ खेलता है, पत्थर थोड़ा अच्छी जाति का है, जैसे चकमक्का होता है, फिगर्स होते हैं, वो होते हैं, ऐसे होते हैं ना, मामूली पत्थर नहीं, जैसे रास्ते में पड़ा है ऐसा नहीं, लेकिन कोई खानी में से निकला हो ऐसा पत्थर आपके घर में है, आपको पहचान नहीं है कि ये पत्थर है या हीरा है, कोई जोहरी आया, आपके संदेह हो, आया देखा इतना बड़ा पत्थर में से हीरा इतना बड़ा निकल सकता है, बड़ा हीरा का पत्थर मिलता ही नहीं, छोटा छोटा हीरा बनाना पड़ता है, क्यों कि बड़ा तो पत्थर मिलता ही नहीं ऐसा, इसकी जो रफ मिलती है उतनी कंकर जैसी मिलती है, उसको तोड़ते हैं तो छोटे छोटे हीरे बनते हैं, बड़ा हीरा मिले ऐसा पत्थर ही नहीं मिलता, और मिले तो उसका बहुत मूल्य होता है, कीमत बहुत होता है। तो उसने पत्थर में पत्थर नहीं देखा, पत्थर में हीरा को देखा, बोला अरे आप लोगों को मालूम नहीं, ये पत्थर नहीं है मामूली, ये तो करोड़ों अरबों का मूल्य होवे ऐसा हीरा है इसमें तो, और ये लड़का बच्चा खेलता है तो उसकी कंकर भी खिरती है अंदर में से, टूटती है तो लाखों का फर्क पड़ेगा उसमें तो, क्योंकि रफ का भी मूल्य होता है, रफ को भी तोल में सेंट में ग्राम में नहीं सेंट में तोला जाता है, रफ भी ग्राम में नहीं मिलते, तो इसमें ये कांकरी खिलती कंकर भी खिल जाती है तो लाखों का फर्क पड़ता है। आप उसको खेलों की तरह खेलने देते हो, बच्चों को क्या समझते हो, वो समझते नहीं है, आप क्या करोगे? सावधानी से इसको लेकर के, फिर अपने हाथ से भी नहीं गिरे, सावधानी से लेकर के तिजोरी में रख दोगे तो कहने से उतनी महिमा आई। अगर आपको खुद को पहचान होती तो मानो कि आप ही जोहरी हो, अब वही दृष्टांत को और लेते हैं कि आप ही जोहरी हो, आपका ध्यान नहीं गया था घर में, पत्थर कब आया, कौन लाया, कैसे आया, बच्चा खेलता है रोज, एक दिन कोई आप फुर्सत में बैठे हो और पत्थर हाथ में लेकर के ऐसे घुमाते हो, उसमें ध्यान गए, अरे ये तो पत्थर नहीं है, बहुत बड़ा अरबों का माल है ये तो, क्या होगा? आपकी मुट्ठी बंद हो जाएगी उसी वक्त, और सावधानी से तिजोरी में रख दोगे। तो ओघ संज्ञा से भी महिमा आती है, गुरु के कहने से भी, शास्त्र के कहने से भी आत्मा की महिमा आती है, और पहचान से भी आती है। अब देखो पहचान की महिमा और कहने वाली महिमा में कितना फर्क है, बहुत अंतर है। तो सही महिमा पहचान से आती है, आए बिना रहती नहीं, तो उसमें फिर वो महिमा लानी पड़ती है, या आ जाती है, सावधानी करनी पड़ती है या हो जाती है, सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो उसकी सुरक्षा का पुरुषार्थ करना पड़ता है या हो जाता है। ऐसे ये चैतन्य हीरा है जिसका मूल्य अरबों के अरबों से भी ज्यादा है, यानी अरबों से इसका मूल्य नहीं किया जाता, नो टर्मिनोलॉजी, कोई टर्म में उसका मूल्य नहीं किया जाता, ऐसा सुख शांति और आनंद से भरा हुआ चैतन्य हीरा है, उसकी पहचान आती है तो उसको संभालने का पुरुषार्थ हुए बिना रहता नहीं। और जब इतनी शांति भरी है फिर मेरी अवस्था में विकल्प की अशांति क्यों? जो मेरे स्वरूप में बेहद शांति भरी है, असीम शांति भरी है, इसे शांति के सागर के किनारे पे अशांति क्यों? पर्याय तो किनारा है, वो बात फिर पोसाती नहीं है, इसलिए वो पुरुषार्थ आगे बढ़ करके शांति को प्रकट कर लेता है, वो तो सहज चलता है। अब एक बात और भी खुली है, जो कल चली थी वही बात की विशेषता से यहाँ खुली है, कि जो चारों पड़खों से उग्र पुरुषार्थ में आया हो, उपड़िया मैंने हिंदी है, हिंदी ग्रंथ रखा है, बस हिंदी दे दो ना, गुजराती ले लो आप, जो चारों ओर से नहीं चला हो, चला हो तो धीरे धीरे चलने की बात नहीं, ये उठा हो तेजी से, उपड़ो मैंने जोर से चला है, जोर से उठा हो, जो चारों ओर से जोर से नहीं चला हो तथा किसी कारणवश चला हो, उसे पुरुषार्थ मंद पड़ने का कारण बनता है। कल बात आया था ना, छूट जाता है सम्यक दर्शन, छूट जाता है। किसको छूट जाता है? कि जो चारों पड़खों से नहीं चला हो उसका छूट जाता है। किसी कारणवश में कोई पूर्व संस्कार का कारण हो और कोई ज्ञानी के या जिन प्रतिमा को देख करके उनको फिर वो भाववासन चालू हो करके पुरुषार्थ चालू हो गया हो, या कोई वैराग्य आकर के जो आसक्ति का प्रतिबंध छूट करके फिर इस चारों पड़खों समझ करके जिसके निश्चय बलवान हो गया, विशेष रूप से बलवान हुआ, सामान्य समझ से नहीं लेकिन विशेष समझ से बलवान हुआ चारों पड़खों से, उनका उनको च्युत होने का संभव कम है। तो इसलिए कहते हैं कि किसी कारणवश चला हो, पुरुषार्थ होता हो, उसे पुरुषार्थ मंद हो पड़ने का कारण बनता है। और जो हर तरफ से गतिमान हो, चारों पड़खों से स्पष्ट हो करके बलवान हो करके फिर उसका पुरुषार्थ हो, उसे पुरुषार्थ की धारा चलती है। क्यों? कि उसको भूल कहाँ होती है वो पहले से ही मालूम है, कहाँ रुचि पलटती है, कहाँ भूल होती है वो पहले से ही मालूम है। एक दफे हमने प्रश्न किया था बुद्धू को इस विषय में कि एक जीव को सम्यक दर्शन हुआ और ये सम्यक दर्शन से च्युत हो गया, मानो कि तुरंत ही च्युत हो गया, ऐसा भी बनता है कि निर्विकल्प दशा हुई, सविकल्प दशा में आते ही च्युत हो गया, ऐसा क्या कारण हुआ बना है? ये भी संभव है। क्यों हुआ ऐसा करके हमने प्रश्न निकाला था, बहुत स्पष्ट थे इस विषय में। एक विकल्प विचार, एक सेकंड विचार करने का नहीं लिया है उत्तर देने में। शीघ्र जैसा प्रश्न पूछा वैसा ही उत्तर दे दिया, उसकी रुचि पलट गई। क्या बोले? पलट गई माने क्या? तो सुख की रुचि हो गई। क्या बोले? शुभ की रुचि हो गई। शुभ की रुचि मतलब क्या हुआ? कि निर्विकल्प अनुभव से छूटा, अशुभ में तो अभी आया ही नहीं, अभी तो स्वरूप की महिमा चालू है, लेकिन विकल्प सही थे, पहले विकल्प सही थी, बीच में निर्विकल्प हुआ, बाद स्वविकल्प दशा में आया और विकल्प चालू हुआ, तो वो विकल्प अशुभ तो तुरंत होता ही नहीं, पहले पीछे निर्विकल्प दशा के आगे पीछे उत्कृष्ट शुभ विकल्प होता है। कैसा? उत्कृष्ट स्वरूप की महिमा वाला, दूसरा नहीं, दयादान का नहीं, उत्कृष्ट होता है, दयादान भी शुभ विकल्प है, लेकिन ये तो स्वरूप की महिमा वाला उत्कृष्ट शुभ विकल्प होता है। तो किसकी रुचि हुई? क्या हुआ? च्युत होने में ये शुभ भाव की, शुभ विकल्प की रुचि, श्रद्धा पलट जाती है, ज्ञान दशा छूट जाती है। इसलिए शुभ का निषेध गुरुदेव ने जोर जोर से इसलिए कहा है प्रवचन देखो आप, ये बहुत पॉइंट आउट हुए ऐसी बात है, बहुत महत्व का मुद्दा वाली बात है ये कि गुरुदेव प्रवचन में बार बार शुभ का निषेध बहुत करते हैं और भक्ति का भी निषेध इस शुभ का निषेध करने के कारण से है, दर्शन में मद होने के कारण से नहीं, क्योंकि उनकी भी भक्ति करते थे, जैसे बैंसर ने उनकी भक्ति किया तो बैंसर को ऐसा नहीं बोला कि आपका राग है, वो मानते थे समझते थे तो उनके ज्ञान में हमारा स्वरूप है, इसकी महिमा उसको आती है, विकल्प तो साथ चलता है, क्योंकि विकल्प तो बेचारे को साथ देना पड़ता है, ज्ञान में सही बात है। तो ये ज्ञान पूर्वक जो विकल्प चलता है लोगों को राग रूप भक्ति दिखती है, ज्ञान रूप भक्ति नहीं दिखती है, वास्तव में भक्ति ज्ञान की परवाह है। और कृपाल जी वो बात करना चाहते हैं, वो राग वाली बात करना, आजकल तो क्या हो गया है कि दो पद जरा अच्छी तरह से भाव से अच्छी तरह से मैंने भाव से गा लें भक्ति अच्छी होगी, तो भक्ति का स्वरूप नहीं है, भक्ति तो ज्ञान की पर्याय है और ज्ञान की पर्याय का निषेध नहीं करते, राग की पर्याय का अवश्य निषेध क्यों? कि राग की रुचि हमारे आराधना के समय दर्शन समय ज्ञान समय चारित्र के जो आराधना के परिणाम है इसके विरुद्ध है, राग विरुद्ध है लेकिन उतना विरुद्ध नहीं है, लेकिन राग की रुचि पूर्ण रूप से विरुद्ध है, उचित करा देती है, ज्ञानी को राग नहीं होता है इसमें बात नहीं है, ज्ञानी को भी राग होता है, शुभ के अशुभ भी होता है, लेकिन उनको रुचि शुभ की भी नहीं है, शुभ की तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, शुभ की भी रुचि नहीं है उसको, तो ये जो रुचि है वो शुभ की रुचि होने से ही च्युत होता है, वो बात इधर सुना इतनी डिटेल से चर्चा नहीं चली है, लेकिन गुरुदेव के साथ हमारी चर्चा इतनी डिटेल से चल गई थी, हमने तो प्रश्न ऐसा किया था कि वो ज्ञानी हुआ फिर वो संसार के कार्य करता है इसलिए चित होता है, ऐसे कोई प्रश्न हमने नहीं किया, हमने तो प्रश्न ये कहा कि निर्विकल्प हुआ अभी तो स्वविकल्प दशा में आते ही चित हो गया कोई, ऐसा बनता है? कहाँ बनता है, क्यों हुआ, ये हमारा प्रश्न, ऐसा क्यों हुआ, नक्षोपम नहीं आवे, नो है नो आवे से तो मिथ्यात्मा आवे, उपशम थे मिथ्यात्मा बने तरतज ऐसा बन जाता है, सूक्ष्म संकेत में ही नहीं आया मिथ्या श्रद्धा में आ जाए, क्यों ऐसा हुआ, तो शीघ्र उत्तर दिया कि सुख की रुचि हो गई उसको, ये सुख की रुचि का निषेध के लिए गुरुदेव के हर प्रवचन में ये बात चली है, कोई प्रवचन खाली नहीं, लोग समझे नहीं तो बोले कि कांजी स्वामी शुभ का निषेध करते हैं, कांजी स्वामी शुभ का निषेध करते हैं, पूजा भक्ति को उड़ाते हैं, व्रत संयम को उड़ाते हैं, दयादान को उड़ाते हैं, ऐसी बात नहीं थी, बात उसमें पारमार्थिक बात वो है कि इसकी रुचि करने लायक वो नहीं है, जीव को जो शुभ भाव होता है वो कषाय की मंदता में होता है और अशुभ भाव होता है वो कषाय की तीव्रता में होता है, और कषाय का स्वभाव ही तीव्र मंद होने का है, जैसे बुखार का स्वभाव कैसा है अभ्रवत नापुक अलग अलग डिग्री का आएगा, इसका स्वभाव है, ये भी एक बुखार है जीव को कषाय है, वो तीव्र मंद निगोर में भी होता है, केंद्रीय में भी होता है, दो इंद्रिय में होता है, तीन इंद्रिय में होता है, चौरण, ये तो संधि पंचेंद्रिय है, उसको तो होगा ही होगा, तो मंद को साय कोई अपूर्व चीज नहीं है, और ये विभाव है, विभाव की रुचि खतरनाक है, विभाव उतना खतरनाक नहीं है जितनी उसकी रुचि खतरनाक है, वो बात पहले से बना, इसलिए मोक्ष की भूमिका में रुचि का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने तत्वानुशीलन में आत्मरुचि का एक चैप्टर अलग ही लिखा गया है। प्रयोग उद्भूत विषय पर जो भी बात आई उसमें एक रुचि का भी चैप्टर है, आत्मरुचि क्या चीज होती है, कैसी चीज होती है। यहाँ से मोक्ष की भूमिका में अगर हमारी रुचि का हमको ध्यान नहीं रहा तो हम दूसरे दूसरे काम करते जाएंगे, और हमारी रुचि है तो पुण्य की फल की यानी जड़ की रह जाएगी, वो सामान्य संसारियों की रहती है। शुरुआत निर्दोषता रुचे सुहाय, सुहाना मैंने रुचना, सुहाना मैंने रुचना, तो यहाँ से रुचि चालू करते उसकी डिग्री बढ़ती है। और एक दफे ये स्वरूप के पहचान के बाद कैसी रुचि होती है कि जैसे पतंगा को दिए की होती है वैसी। पतंगा है वो दिए से नहीं रह सकता, उसको वो भी भान नहीं रहता कि मैं दिए पे जब झपट लगाऊंगा तो मेरी पांखें जल जाएगी और मैं स्वाहा हो जाऊंगा, वो भी उनको ध्यान नहीं रहता। उनको उतने भक्ति कहो, प्रीति कहो, आसक्ति कहो, प्रेम कहो, उतना होता है दिए से कि वो सोचता नहीं कि मैं अभी वहाँ जाऊँ या बाद में जाऊँ, कोई मुहूर्त निकालूँ, हाँ कैसे करूँ। वो तो देखता है और वहाँ जोर से जाता है। ये तीव्र रुचि का स्वरूप है, यानी स्वरूप की पहचान के बाद जो रुचि पैदा होती है वो पतंगा के जैसे होती है, वो अलग नहीं रह सकते, वो अपने परिणाम को स्वरूप से अलग नहीं रह सकते, इसलिए उनको अभेद अनुभव होने में देर नहीं लगती। इसका यही कारण है, रुचि ही कारण है इसका। रस और रुचि साथ रहते हैं, रस और रुचि साथ रहते। रुचि का परिणाम सूक्ष्म में अगर पकड़ने में नहीं आता है तो रस से पकड़ा जाता है, इसलिए हमारे परिणामों की चर्चा में रस फैक्टर को मुख्य रूप से गिनने में आता है, यही कारण है इसका। क्योंकि तो रस और रुचि अविनाभावी होता है, साथ साथ ही चलता है। उल्टा रस तो रुचि भी उल्टे, सुल्टा रस तो रुचि भी सुल्टे। तो कहते हैं कि जो
रस के ज्ञान में
घातक विपरीत रस, विपरीत रस ज्ञान नो घातक है अथवा स्वभाव नो घातक है। हाँ, रस बढ़ने से विपरीत रस बढ़ने से विपरीत रुचि बढ़ने से दर्शन वो तीव्र हो ही जाएगा। हाँ लेकिन सुल्टा स्वरूप रस, आत्मरस, चैतन्य रस, और उसको कहते हैं अमृत रस। कैसा कहते हैं उसको? अमृत रस। जो स्वरूप रस है, जो आत्मरस है, चैतन्य रस है, वो अमृत रस है, और वो जीव का स्वरूप है, जीव का स्वभाव है। वो जिसको वो रुचता है, अमृत रुचता है, उसको विष कैसे रुचेगा? उस समय सार के आखिरी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में आखिरी अधिकार है, उसमें प्रतिक्रमण के विकल्प को विषकुंभ कहा है। क्या कहा है? विषकुंभ कहा है। आचार्यों ने वो बात कही है। ये सूप का निषेध आया ना, तो संप्रदाय के लोग तो शुभ में पड़े हैं, पूजा भक्ति में पड़े हैं, व्रत नियम में पड़े हैं। गुरुदेव का विरोध हुआ, मरणी जी थे वो दिगंबर संप्रदाय में मुख्य थे, किसी ने विद्वान ने प्रश्न किया कि कांजी स्वामी ऐसे प्रवचन करते हैं, जहर का घड़ा बोलते हैं सूप को, क्या विषकुंभ कुंभ? मैंने घड़ा, जहर का घड़ा है, विष वृक्ष है, क्या सही है वो बात? ऐसा बोलना चाहिए क्या? लोग कैसे सूप करेंगे? हमको तो दूसरे की पड़ी है, समाज की पड़ी है, समाज में क्या हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन देखो वर्णी जी ने बोला कि समय सार अगर पढ़ना होगा मेरे से, तो मैं भी यही कहूंगा, क्योंकि आचार्यों ने वो बात कही है। वो कोई कांजी स्वामी के घर की बात नहीं है, वो तो 2000 साल पहले कुंदकुंद आचार्य हुए और 1000 साल पहले अमृत चंद्र आचार्य हुए, उन्होंने ये बात लिखी है और ये बात कही है। तो जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों हैं ये आचार्य, तो हमारे दादा परदादा हैं, हमारे दादाएं ये बात करते करके गए, हम भूल गए थे, भटक गए थे और जगह, तो स्वामी जी ने सही रास्ते पे ला दिया कि देखो हमारे दादाएं क्या कह के गए हैं। और जो दादाएं कहे, इसके दादा तीर्थंकर थे, ये भी हमारे दादाएं परदादाएं हैं, तीर्थंकर भी तो इनके कुल में आए हैं, इनके परिवार में है, और इनकी नहीं माने ये बात कैसे बन सकती? लेकिन वो आगमों में क्या क्या भरा है वो आम जनता को पता नहीं है, और त्यागी लोगों ने चढ़ा दिया, इसका त्याग करो, उसका त्याग करो, वो कर दो, वो कर दो, दान दे दो, फलाना कर दो, बात खत्म, मूल चीज हो गई। लेकिन बहुत से दिगंबर लोग भी जो समझदार थे, अरे हिंदुस्तान में से आते थे, इम्फाल से आते थे, इम्फाल गुवाहाटी वहां से आते थे, और ऊपर देहरादून से आते थे, ऊपर से आते थे, नीचे मद्रास मदुराई से आते थे। बात रही समझ की, ई भाव हे छे, ई भाव झेर छे, एम कहता था हे छे। केम के शुभ भाव छे, गोत्र कर्म कहो, नाम कर्म कहो, दोनों प्रकृति बनती है। तीर्थंकर नाम कर्म भी बनता है और गोत्र कर्म भी बनता है, जिस भाव से तीर्थंकर होता है वो कर्म बनता है, वो शुभ भाव से बनता है, शुद्ध भाव से, आराधक भाव से, तो कर्म छूटता है, बंधता नहीं है लेकिन छूटता है। तो जो भी भाव से कर्म बनता है, चाहे कितना भी शुभ हो, तीर्थंकर प्रकृति का जो भाव है वो सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव है, इससे उत्कृष्ट शुभ भाव कोई नहीं है। और खुद ही तीर्थंकर होने वाले थे, खुद को मालूम था सूर्य है नहीं। वो सुगानी जी ने कहा है कि ये गुरुदेव की ताकत है कि तीर्थंकर प्रकृति के भाव को भी जहर कहना, ये उनकी ताकत है, खुद होने वाले हैं। लेकिन जो इसके लालायत है वो तो तीर्थंकर बन सकते नहीं। वो आते हैं ना, सोलह कारण भावना भाए, सोलह तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ, परम गुरु हो। तो ऐसे कोई तीर्थंकर प्रकृति और नाम कर्म नहीं बनता है। और जिसको बनता है उसको इसकी उपादेयता होती नहीं, त्यागे उसको आगे और मागे उसको भागे, ये बात रही है। जैसे कोई मंदिर में जाता है, भगवान का दर्शन करता है, भक्ति पूजा करता है और मांगता है कि हे प्रभु मेरा रोग मिट जाए, मेरी निर्धनता मिट जाए, मेरे को प्रतिकूलता मिट करके सब प्रकार की अनुकूलता हो जाए। तो वो भाव शुभ भाव है या अशुभ भाव है? वो तो अशुभ भाव है। वो मांगता है उसको भागता है, उसको वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तो अशुभ हुआ। वो चीज तो शुभ के फल में आती है, पैसा आता है, तंदुरुस्ती आती है, अनुकूलता आती है, वो तो शुभ के फल में आती है। और मांगने वाला अशुभ भाव से मांगता है, तो जिसने मांगा उसको भागा। तो ये कुदरत का नियम है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति को मांगने वाले को तीर्थंकर प्रकृति नहीं मिलती है, जो उसको हे करता है उसको ही होती है, ऐसी बात है। वो तो कुदरती व्यवस्था है, इसका क्या होगा? वो तो खड़ है, धान तो आनंद शांति और सुख है, सुखामृत है, वही धान है, उसमें सुख मिलता है। ये कोई देवलोक की संपत्ति से कोई सुख भूख मिलता नहीं, वो बेचारे दुखी है, मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि तो नरक में भी सुखी है, मिथ्या दृष्टि देव में भी दुखी है। सुख दुख का हिसाब कहाँ से लगाओगे? जो कहते हैं यहाँ के जो हर तरफ से गतिमान हो उसे पुरुषार्थ की धारा चलती है। मैंने चारों ओर से मजबूत होकर के जिसका निर्णय हुआ और उसको छुट्टी कैसे होती है, उसका भूल कैसे होती है, उस सब तरह का भान है, उसे उसको पुरुषार्थ की धारा ऐसी चलती है तो उचित होता नहीं है। तथापि उसे पुरुषार्थ तो अंत तक अक्षुण्ण अप्रतिहत धारा से करना चाहिए, यानी बताइए जिसको तीव्र गति है चारों ओर से ठीक है उसका तो पुरुषार्थ अप्रतिहत धारा से मैंने छूट नहीं जाए, इस प्रकार की उसकी जो धारा होती है उस तरह से उत्सर्जित होता है, यही बात है। यहाँ 292 समाप्त हुआ, टाइम हुआ है क्या? ठीक है, 2 मिनट तो 2 मिनट में चलने वाला। तीसरा जो है वो उसी लाइन का, इसलिए तीनों का साथ में आशय लिखेंगे। ये 292 समाप्त होता है, यहाँ तक रखें।